ओम शांति। हम सभी दो दिन से डॉक्टर सविता दीदी जी से सुन रहे हैं। आप सरलता और विनम्रता के धनी हैं। बाबा के अमूल्य रत्न, ईश्वरीय परिवार के अमूल्य रत्न हैं। और आप सभी ने सुना, आपने अपने मेडिकल की पढ़ाई राजस्थान यूनिवर्सिटी से की और आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता में बहुत बहुत रुचि रही है और आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहकर उनको स्वास्थ्य लाभ देने में आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है और ये आपको बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ। और 1975 में आप इस विद्यालय के संपर्क में आए और 1989 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आपने भारत और भारत के बाहर कंट्रीज में अनेक देशों में जाकर अनेक प्रकार के कोर्स कराकर, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स, हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, मेडिटेशन और मेडिसिन कोर्स, अनेक आत्माओं को दुख से छुड़ाकर अनेक आत्माओं को दिल की राहत दी, सुकून दिया। ऐसे दीदी जी के लिए मैं चार लाइनें कहूंगी। खुशी उन्हें नहीं मिलती, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। खुशी तो आप जैसे लोगों को मिलती है जो विश्व सेवा के लिए परमात्मा की श्रीमत पर अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं, अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। ऐसे दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। बहुत जोर से ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत। अब हम सुनेंगे दीदी जी से। ओम शांति।
ओम शांति। तो विषय है सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य। वैसे तो दो दिन से इस विषय पर कुछ ना कुछ कहा ही जा रहा है। हम सब महिलाओं का संबंध विशेष रूप से परिवार से होता है। महिला परिवार की धुरी है, परिवार उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम सब की ये कामना रहती है कि परिवार में सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि चाहते हुए भी हम अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाते। अनेक संबंधों का हम निर्वाह करते हैं, अनेक रोल हम प्ले करते हैं। और यदि वर्किंग है तो फिर ऑफिस में जाते हैं, वहां पर अफसर हो सकते हैं या एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो भी एक रोल हो जाता है हमारा। तो अनेक रोल प्ले करते हुए उसके बीच में संतुलन रख पाना और परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। हम देखते हैं संसार में अरबों लोग रहते हैं लेकिन किन्हीं भी दो मनुष्यों के चेहरे नहीं मिलते, तो फिर संस्कार भी नहीं मिलते हैं। जब संस्कार नहीं मिलते हैं तो विचारों की भी भिन्नता है, तो कहीं ना कहीं परिवारों में टकराव होता है, आपस में ऊंच नीच हो जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है और यदि उन गुणों को हम जीवन में अपना कर चलते हैं तो फिर हम उस संबंध में रहते हुए भी सुख का अनुभव करते हैं। तो विशेष रूप से जब माता पिता और बच्चों के संबंध की बात आती है, सबसे ज्यादा वर्तमान समय में जो संघर्षपूर्ण संबंध है आज माता पिता और बच्चों का संबंध है, क्योंकि जनरेशन गैप काफी बढ़ चुका है। संसार में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं पिछले 10-20 सालों में, जो पिछले शायद 100-500 साल में भी नहीं हुए। जो हमारे जीवन मूल्य रहे वो आज की पीढ़ी के जीवन मूल्यों से बहुत भिन्न हो चुके हैं। तो आज माता पिता यदि बच्चों को अपने मूल्य देना चाहते हैं तो बच्चे उसका विरोध करते हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जब माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे हमको समझ नहीं सकते हैं, कहना नहीं मानते हैं, या जो मार्गदर्शन हम इनको देते हैं उसको ये महत्व नहीं देते हैं, अपनी ही तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, या ज्यादा समय वो सोशल मीडिया में व्यतीत करते हैं, मोबाइल में मैसेजेस में लगे रहते हैं, इंटरनेट है या अनेक प्रकार के और भी जैसे टेलीविजन है, जो भी वर्तमान साधन है, जो गैजेट्स मिले हुए हैं उसमें ज्यादा वो चले जाते हैं। तो हमें उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। तो दो तरह के आचरण दिखाई देते हैं बच्चों के प्रति। कई माता पिता बहुत सख्त होते हैं और बहुत ज्यादा नियमों को बच्चों को पालन करने का निर्देश देते हैं। जब बहुत सख्त अनुशासन होता है तो वो डर जाते हैं। बच्चे जरूर कोशिश करते हैं कि वो आपकी बात माने और उसके कारण वो दबे दबे रहते हैं। इससे उनमें हीन भावना आने लगती है, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है इनको जैसा जीवन जीना है इनको अपना जीवन जीने का अधिकार है, बहुत लाड़ प्यार देते हैं बच्चों को, बहुत प्रेम देते हैं। उसका कारण होता है कि वो खुद बहुत व्यस्त रहते हैं और उनको उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं होता है, तो सोचते हैं कि बच्चे इनमें लगे रहेंगे तो वो माँ बाप को याद नहीं करेंगे या माँ बाप की कमी को वो महसूस नहीं करेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं, क्योंकि धन की तो कमी नहीं है, दोनों ही माता पिता कमा रहे हैं, तो जो साधन बच्चों को चाहिए वो सब बहुत प्रेम से खुशी से उनको लेकर के देते हैं। बस एक ही चीज की कमी होती है कि समय नहीं है, उनको बच्चों के लिए समय नहीं है। तो ऐसे बच्चे भी निरंकुश हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि एक आयु के बाद आपका उन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, आप प्रेम नहीं दे पाए बच्चों को उतना, तो फिर वो दूसरी जगह प्रेम ढूंढने लगते हैं और कई बार वो भटक जाते हैं, कई बार व्यसनों में भी लिप्त हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं अपने जीवन में, गलत संग में पड़ जाते हैं। और जब तक हमें होश आता है तब तक बात काफी आगे निकल चुकी होती है और फिर पछताने के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं रहता है। तो यहां पर छोटेपन से ही बच्चों को हम दो दिन से ये बात कर रहे हैं कि यदि हम सही संस्कारों का सिंचन करते हैं, 1 से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है वो बच्चों को प्रिंस की तरह पालने की होती है। आप भरपूर उनको प्यार दीजिए, जो भी आप उनकी परवरिश में बहुत ही अच्छी तरह से जो भी कर सकते हैं वो करिए, लेकिन 5 से 15 साल की जो उम्र होती है वो संस्कारों को देने की होती है, संस्कारों के बीज बोने की होती है। और उस समय जो आप बच्चों को सिखाते हैं वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहता है, और फिर 15 साल की उम्र के बाद आप उनके दोस्त बन जाइए। 5 से 15 साल तक आप टीचर बन जाइए, भले ही सख्त रहें, अनुशासन सिखाएं, यहां पर प्रेम और अनुशासन का संतुलन बना रहे। अनुशासन सिखाना भी जरूरी है। कभी कभी हमें, जैसे हम
पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को हमें खींचना पड़ता है और कभी कभी हमें उसे ढील देनी पड़ती है। तो जहां खींचना है यानी नियम सिखाना है उसमें कभी हमें सख्त भी होना पड़ता है तो भले हम सख्त हो जाएं, और कहीं कहीं हमें ढीला भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी उनको हमें आजादी भी देनी पड़ती है, तो वो हम स्थिति में परखें और निर्णय लें। सही निर्णय हम लेंगे तो उनके सही व्यक्तित्व का विकास होगा जैसा हम व्यक्तित्व चाहते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हम गुस्से में आकर के हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता है तो हम ऐसे ऐसे शब्द बोलने लग जाते हैं बच्चों के प्रति जो हमें नहीं कहने चाहिए। हाँ, मूर्ख है, पागल है, गधा है, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, जो भी उस समय गुस्से में, क्योंकि कई बार गुस्से में इंसान को खुद ही समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। और यदि हमने कई बार ऐसे शब्द कह दिए तो बच्चे अपरिपक्व होते हैं और कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, वो आपके उन शब्दों को वैसे का वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा हम उनको कह रहे होते हैं और फिर वही उनके जीवन में असफलता का कारण बनने लगता है क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। वैसे सोचते हैं कि मेरे माता पिता मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो जरूर किताब उठा के पढ़ते हैं आपके डांटने से या आपके कहने से, लेकिन वो सचमुच पढ़ नहीं रहे होते, उनके मन में वही चलता रहता है जो माँ ने गुस्से में कहा या जो पिता ने गुस्से में कहा। तो जरूर हमें जो उन्हें सिखाना है सिखाएं, लेकिन कई बार हमें भी धैर्य रखना होता है। हो सकता है जो हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं उनको एक बार में समझ में नहीं आती बात, तो आपको दो बार कहना पड़ सकता है, आपको तीन बार कहना पड़ सकता है, उससे भी ज्यादा बार कहना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा उनको प्यार से समझाएं उनको ऐसा क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सोशल मीडिया में होते हैं, वो देखते हैं मेरी माँ टेलीविजन देख रही है, मेरी माँ फेसबुक पर है, या मेरी माताजी जो है वो व्हाट्सएप चेक करती रहती हैं, और अगर मैंने भी किया तो क्या गलत किया। तो जो चीज हम नहीं छोड़ सकते वो हम बच्चों से छोड़ने की अपेक्षा करते हैं ना, आज का तो समय ही वो है, हम पीछे तो अब नहीं जा सकते हैं, जहां तक जमाना आ चुका है हमें जमाने के साथ ही चलना है, तो बच्चे भी जमाने के साथ ही चलेंगे। लेकिन हाँ, हमारा फर्ज क्या है कि हम उनको डूज और डोंट्स जरूर समझा दें कि अगर आप किसी भी चीज की अति बुरी होती है, इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, तो जरूर उनको सावधानी हमें देनी है, और वो उस सावधानी को यदि आप सही तरीके से देंगे तो अवश्य पालन करेंगे क्योंकि वो भी समझदार इंसान है, उनको भी पता है मेरा भला किसमें है और बुरा किसमें है। लेकिन कई बार हम इतने भयभीत होते हैं कि हमारा अपना भय हम बच्चों के ऊपर निकालते हैं और फिर उनको सही मार्गदर्शन हम नहीं कर पाते हैं। एक बार ऐसे ही एक पिता अपने बच्चे के साथ पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग आसमान में बहुत ऊंची उड़ रही थी, अच्छी हवा चल रही थी, तो बच्चे ने कहा कि ये डोरी हम काट देते हैं पतंग और ऊंची चली जाएगी। तो पिता ने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा ये पतंग नीचे आ जाएगी, ये डोरी से ही उड़ रही है। तो उसको बच्चा छोटा था, उसको समझ में नहीं आया, तो उसने कहा कि पिताजी डोरी काट देते हैं और ऊंची जाएगी। तो पिता ने उसको समझाने के लिए डोरी काट दी बच्चे की बात मान के, और वो तो वैसे ही हुआ कि पतंग ऊपर जाने की बजाय धीरे धीरे नीचे आकर के गिर गई। तो वास्तव में उठ कैसे रही थी वो पतंग, डोरी से उठ रही थी, जो लग रहा था कि उसको ऊंचा जाने से रोक रही है वास्तव में वही उसको ऊंचा उठा रही थी। तो कई बार ऐसी बातें होती हैं जो ऐसा लगती है कि यही बातें इनको ऊंचा नहीं उठा रही हैं, पर वास्तव में वही उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रही होती हैं। तो वो अनुशासन की बातें सिखाना जरूर हमारा फर्ज है, लेकिन अगर बच्चे वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर आत्मा के अपने संस्कार हैं, यहां आपने समझा, और जो बच्चा आपके घर में जन्म लेता है वो आत्मा का केवल वो वर्तमान ही नहीं है, वो अपने पूर्व जन्मों से भी कुछ कर्म लेकर के आया है, उसके वो कर्मों का प्रभाव भी उसके ऊपर होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव। तो कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, तो फिर हमें न्यारा हो जाना पड़ता है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब इस आत्मा का जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है उसकी, वो उसके साथ है। तो ऐसे हम बच्चों के प्रति अपने फर्ज को ईमानदारी से निभा पाएंगे और जो श्रेष्ठ संस्कार हम उनको देना चाहते हैं वो हम दे पाएंगे और उनके व्यवहार से हम दुखी नहीं होंगे। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध है परिवार में, कई बार पति की अपनी पत्नी से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को कोई बात कही मानती हैं, उसी अनुसार कार्य करती हैं, तब तो खुश रहते हैं, लेकिन यदि वो उनकी बात को किसी कारण से नहीं मानती हैं और वो नहीं करती है जो पति ने कहा, तो पति को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी पत्नी मेरी ही बात नहीं मानती है। और कई बार थोड़ा अहम तो होता ही है, अहंकार और क्रोध दोनों का संबंध है, क्रोध के पीछे कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहम होता है, तभी वो क्रोध का रूप ले लेता है और फिर दोनों में कलह शुरू हो जाती है। कई बार इतनी नाराजगी होती है कि आपस में एक दो से बात भी नहीं करते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन दिनों तक आपस में बातचीत नहीं हो रही है, फिर माध्यम बच्चों को बनाते हैं, बेटा अपनी मम्मी को ये कह देना या मम्मी कहेगी अपने पापा को ये कह देना, और ऐसा माहौल होता है तो बच्चे के ऊपर उस माहौल का क्या असर पड़ेगा। हमने अपने परिवार में ये कई बार देखा, हमारे माता पिता ऐसे ही झगड़ते थे और फिर कई दिनों तक उनके बीच में आपस में बातचीत नहीं होती थी और फिर हमें यूज करते थे वो। तो ऐसा कई परिवारों में हो जाता है और सिर्फ बीच में अहम, कौन झुके, दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, या पत्नी की अपने पति से जो अपेक्षाएं होती हैं अगर वो पति पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो पत्नी नाराज हो जाती है। एक बार ऐसे ही दोनों में से यदि कोई, जैसे हारमनी उस दिन दादी जानकी जी ने बताया था, मैंने हारमनी कब होती है, मैंने हार मान ली, और यदि मैंने हार नहीं मानी तो हम अपनी जिद पर मैं सही हूं और फिर हम उसको सिद्ध भी करते हैं, कितना उसके पीछे हम बहस करते हैं, बात कितनी बढ़ती जाती है और जीवन में अशांति, उसका परिणाम क्या होता है, यही होता है घर का सुख समाप्त हो जाता है। तो ऐसे एक पति पत्नी थे, दोनों ही बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे, घर में छोटी छोटी बात में झगड़ा होता था, एक गुस्से वाला हो दूसरा शांत हो तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती है, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे तो घर में रोज ही कलह होती थी, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन घर में कलह नहीं होती थी। तो एक बार उनकी पड़ोसन आई, उसने कहा कि बहन जी मैंने अपने घर में कथा रखी है, जैसे कई लोग कथा करते हैं कीर्तन करते हैं अपने घर में, तो ऐसे ही उसने कथा रखी थी तो उसने निमंत्रण दिया, तो उस दिन वो बहुत ही अशांत थी तो उसने सोचा जरूर मैं कथा पर जाऊंगी। गई वहां कथा पर तो देखा एक पंडित जी आए हैं कथा कर रहे हैं, उसने कथा सुनी तो अच्छा लगा, फिर उसने सोचा क्यों नहीं मैं इनसे ही पूछूं, ये पंडित जी हैं, मैं मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, ये मुझे कुछ उपाय बताएं। तो बातचीत की तो पंडित जी ने सारी बात सुनी और उनको समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि देखो बहन मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो तभी मैं वो उपाय बताऊंगा। तो उसने कहा आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसे दिया, कहा कि जब तुम्हारे पति गुस्सा करते हैं तो इसमें से कुछ घूंट पानी तुम अपने मुंह में रख लेना, पानी पीना नहीं है, जब तक आपके पति बोलते रहते हैं तब तक ये पानी मुंह में रहेगा, पीना नहीं है। तो वो समझ गई, जैसे आप में से कुछ बहनें समझ गई, मुस्कुरा रहे हैं ऐसे, वो भी समझ गई। तो अब लेकिन पहले से ही उन्होंने वादा ले लिया था कि पानी पीना नहीं है, तो उसने चुपचाप पानी लिया और घर चली गई। वहां रोज की बात थी, कोई बात हुई पति गुस्सा करने लगे। अब आज वादे के अनुसार उसने पानी मुंह में रखा था तो बोल नहीं सकती थी, चुप थी, बोलना चाहती थी लेकिन पंडित जी से वादा किया था तो चुप। पति ने सोचा क्या हुआ है आज इसको, इतनी शांत कैसे है, रोज तो बराबर का जवाब आता है, आज तो बिल्कुल शांति है। उन्होंने और जोर जोर से बोला कि ये कुछ जवाब देगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुंह में पानी था। ठीक है, थोड़े समय के बाद पति शांत हो गए क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, जब एक बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा है तो कितना बोलेंगे, तो जल्दी चुप हो गए आज। फिर दूसरे दिन भी कुछ बात हुई, उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया, आज भी उसने पानी मुंह में रख लिया, शांत थी। फिर उनको लगा कि आज भी नहीं बोल रही है, तीसरे दिन भी नहीं बोली, तो उन्होंने कहा क्या इसने अपने आप को बदल लिया है, उसके मन में विचार चलने लगा। तो फिर उन्होंने सोचा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, जानबूझ के थोड़ा सा कोशिश की गुस्सा दिलाने की, लेकिन वो तो अपने वादे के अनुसार हर बार पानी मुंह में रखती थी तो चुप रहती थी। तो जब कई बार ऐसा हो गया और उनको पक्का निश्चय हो गया कि मेरी पत्नी ने बदल लिया है अपने आप को, तो फिर उनका ध्यान खुद पर गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ही गुस्सा करता हूं, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी गुस्सा कम करना शुरू किया और एक दिन ऐसा आ गया घर में कि बिल्कुल शांति थी, किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, ना पति ने गुस्सा किया और वो तो अभी कर ही नहीं रही थी। तो वो इतनी खुश हुई, उसने सोचा कि पंडित जी की तरकीब ने काम किया है, मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो वो गई वहां और उन्होंने कहा, पंडित जी मैं नहीं जानती मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, सचमुच आपके पानी ने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप थोड़े समय के लिए शांत रह जाओ, और देखो आप शांत रही तो कितने अच्छे परिणाम मिले आपको। आप ऐसे ही सदा शांत रहो, आपका घर सदा ही स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहने कहते हैं कि बहन जी ये कहानी तक ठीक है, लेकिन सचमुच जब ऐसा होता है तब हम चुप नहीं रह सकते। चुप रह सकते हैं नहीं रह सकते, आपसे पूछते हैं हम, क्या कहेंगे, जो समझते हैं हम रह सकते हैं। खासकर पति जब गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं किसी बात को, तो भी हम शांत रह, कई तो रहते हैं सचमुच शांत क्योंकि समझते हैं, एक आपसी समझ होती है कि पति की कमजोरी कहाँ है, तो उसको समझ के बिल्कुल उस समय चुप रह जाते हैं। हाँ, तो वो तो अपने घर में शांति बनाए रख पाते हैं, लेकिन जो नहीं रह पाते हैं और अगर वो समझते हैं कि अभी हम शांत रह सकते हैं, वो हाथ उठाइए। सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं, अच्छे से हाथ उठाइए। तो देखिए आप अपने लिए ताली बजाइए। हाँ, मुबारक हो आपको, अगर इस सम्मेलन से ये भी परिवर्तन आप करके जाते हैं तो ये भी इसकी एक सफलता है, क्योंकि गुस्सा करना जीवन में सबसे बड़ा दुख और अशांति का कारण बनता है। अगर हम शांत रह जाते हैं थोड़े समय के लिए, अगर हम शांति से जवाब देते हैं किसी को, तो फर्क पड़ता है। मानो हम शांत रह गए, हमें अपनी बात कहनी है, जरूर कहें, ऐसे नहीं कि अपनी बात हमें नहीं कहनी है, हमें अपने मन को दबा देना है, लेकिन तुरंत मत कहिए, रिएक्ट मत करिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं गुस्से में। अगर हम जवाब देते हैं, मानो किसी ने गुस्सा किया और उसी समय मैंने जवाब दिया, तो हमारा जवाब भी गुस्से वाला होगा क्योंकि गुस्से ने गुस्से को ही जन्म दिया। लेकिन उस समय हम शांत रह जाते हैं तो बाद में हम वही बात धीरज से कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर के कहेंगे, तो फर्क पड़ जाता है, उसी बात को फिर समझा जाता है और हमें उसका समाधान मिलता है। सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरी गलती है, और गुस्से में वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, ये स्थिति पैदा हो जाती है। और जो हमारी अपेक्षाएं हैं, हमेशा हम ये समझें कि हमारी सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग हैं। जैसा मैं सोच रही हूं जरूरी नहीं है दूसरा भी वैसा ही सोचता है। तो अगर मेरी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हो रही तो हम अपने आप को उनकी स्थिति में रख करके देखें कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी तरह से सही कर रहे हैं। तो हमेशा मेरे कर्तव्य का मुझे पालन करना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से, जो भी संबंध है, चाहे वो बच्चों के प्रति हैं, चाहे वो पति के प्रति हैं, और भी सास बहू के संबंध हैं, ननद भाभी के संबंध हैं, देरानी जेठानी के संबंध हैं, इन सभी संबंधों का हम निर्वाह करते हैं। सास बहू का संबंध, हाँ, ये तो बहुत ही नाजुक संबंध होता है और बहुत बदनाम संबंध भी है हमारे समाज में, जो सास बहू का संबंध है। बहू शादी होकर के घर में आती है, अब आजकल के जमाने में लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, ज्यादा समय वो घर के कार्यों को सीखने में नहीं दे पाती हैं, तो वो खाना बनाने में इतनी कुशल नहीं होंगी या गृह कार्यों में इतनी कुशल तो नहीं होती हैं। अब जैसे ही वो आती है ससुराल में विशेषकर सास की अपेक्षा होती है कि बहू आई है घर में तो सारा घर संभाल लेगी, अब मुझे थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ, एक बहन की शादी हुई और वो शादी होकर के आई, काम करने लगी, तो देखती थी वो तो काम सही तरीके से नहीं कर पाती थी, खाना भी सही ढंग से, हालांकि उसने सीखा था लेकिन क्योंकि बहुत साल पढ़ाई में चले गए तो उतना अच्छा खाना बनाना उसको नहीं आता था, तो कोई ना कोई स्वाद में ऊपर नीचे होता था, तो नेचुरली जब सास उसको खाती थी तो उसने नुक्स निकालती थी, कमी निकालती थी, तो उसको बहुत निराशा होती थी कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना सब काम किया और मेरी सास तो कभी मेरी तारीफ करती ही नहीं है, हमेशा ही कमी निकालती है। तो उदास रहने लग गई वो। तो पति ने पूछा कि क्या बात है, खुश नहीं रहती हो, इतना उदास रहती हो, क्या कारण है, जानने की कोशिश की। तो उसने सोचा कि मुझे नहीं कहना चाहिए, तो बहुत उसने छुपाने की कोशिश की कि मैं ना बताऊं, लेकिन जब पति पीछे ही पड़ गए तो फिर आखिर उसने बता दिया कि मैं जो भी काम करती हूँ वो पसंद नहीं आता है माँ जी को, और वो मेरे से नाराज होती हैं और मेरा मन खराब हो जाता है। तो पति ने सोचा कि ये तो अभी नई नई है, मुझे अपनी माँ को ही समझाना चाहिए, अब माँ को समझाने जाएंगे तो क्या होगा, हाँ समझ सकते। तो उसने माँ को समझाने की कोशिश की, तो माँ ने पहले उसको अच्छी तरह समझा दिया, अच्छा ये तो चार दिन की आई है, मैं तो जिंदगी भर से तेरे साथ रहती हूँ, तो क्या तू चार दिन की आई हुई उसका हो गया, ऐसा ही होता है ना। खैर जो भी था, मतलब तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो नया व्यक्ति घर में आया है वो एक दूसरे परिवार से आया है, उसके घर की परंपराएं अलग हैं, हो सकता है उनकी संस्कृति भी, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग रही, हमारे घर में हमारे तौर तरीके अलग हैं, तो उसको ढलने में टाइम लग सकता है। तो हमें धीरज रखना पड़ेगा जब तक कि वो हमारी, उसने कई बार कहा अपनी सास को, आप मुझे सिखा दीजिए, जैसा आप सिखाएंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन सास को टीवी देखने से फुर्सत हो तब तो वो उसको सिखाए, हाँ अब वो सिखाएगी नहीं और वो गलती करेगी तो फिर उसको डांटती रहेगी सारे टाइम, तो ये हमारी ही कमी हो जाती है। और जो नई बहू आती है उसको भी ये समझना चाहिए, कई बार ऐसा होता है बहुत आधुनिक होते हैं और हमारे को लगता है हमारे ससुराल में जो परंपराएं चल रही हैं ये तो बहुत पुरानी है, ये तो रूढ़िवादिता है, आज के जमाने में कौन इन सब चीजों को मानता है करता है। चलो लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हमारे लिए ये सब अब पॉसिबल नहीं है, तो आप अपनी बात को नम्रता से उनके सामने रख सकते हैं कि अब समय बदल चुका है तो इसका औचित्य क्या है, कारण क्या है, वो हम उनको समझाएं। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि क्योंकि सास बहुत समय से उस घर में है और वो पूरी तरह से अनुभवी है, तो हम उनकी आज्ञा का ही पालन करें, जैसा वो चाहती हैं उनके अनुसार ही हम परिवार की परंपरा को चलाएं, ताकि नई पीढ़ी भी उस परंपरा को सीखे। जो आज हमने शाम का विषय सुना, संस्कृति की संरक्षक संवाहक कौन है, महिला है, वो अपनी नई पीढ़ी को फिर वो संस्कार दे पाएगी। एक बार ऐसे ही घर में रसोई में सास बहू मिलकर काम कर रही थी और पिता और बेटा खाना खा रहे थे, तो घर रसोई में एक बर्तन टूट गया, कांच का बर्तन टूट गया, और फिर उसके बाद कोई आवाज नहीं हुई। तो पिता ने पूछा कि अंदर एक बर्तन टूट गया है, तो बेटे ने स्पॉन्टेनियस जवाब दिया, मेरी माँ ने तोड़ दिया है। तो पिता ऐसे देखने लगे कि सीधा बोलता है माँ ने तोड़ दिया है, तो माँ ने कैसे तोड़ दिया है। तो उसने पूछा, क्यों तू ऐसे नहीं बोलता है, मेरी पत्नी ने तोड़ दिया है, माँ ने तोड़ दिया है, ऐसे क्यों बोलता है। तो उसने कहा, मुझे पता है ये माँ ने तोड़ा है। तो उसने कहा, तुम जाओ रसोई में और पूछ कर आओ किसने तोड़ा है, ऐसे नहीं कह सकते तुम। गया वो अंदर, पूछ के आया तो कहा कि माँ कोई बर्तन उठा रही थी कांच का, उनके हाथ से छूट गया और टूट गया। तो उसने कहा, इतने निश्चय से तुमने कैसे बोला कि माँ ने तोड़ा है। उसने कहा कि माँ ने तोड़ा इसलिए आवाज नहीं हुई, अगर मेरी पत्नी तोड़ती तो सिर्फ बर्तन नहीं टूटता। तो अगर कोई बड़ा गलती करता है तो फिर छोटे चुप रह जाते हैं, लेकिन अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े चुप रहते हैं, नहीं तो हम चुप रह सकते नहीं रह सकते, हमें भी चुप रहना चाहिए, है ना। तो अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर तो फिर घर में अशांति नहीं होती। बच्चा गया, अगर कोई बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ही उसके निमित्त कारण होते हैं। बच्चे फिल्म देखने चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और फिर वो घर में आकर के आपसे झूठ बोलते हैं कि वो कॉलेज नहीं गए, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। आपको कहीं से पता चल जाता है, वो आपको नहीं बता रहे लेकिन कहीं से आपको पता चल जाता है कि वो बच्चा कॉलेज जाने के बजाय फिल्म देखने चला गया। अब वो क्यों आकर के आपको झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे साथ क्या होने वाला है, और उस व्यवहार को वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो आपके सामने झूठ बोलता है। वही अपनी कमी को वो दादा दादी के सामने आराम से जाकर के कह देगा, उसको पता है कि दादा दादी चुपचाप सुन लेंगे और फिर कुछ कहेंगे नहीं, नाराज नहीं होंगे। हाँ, अगर कुछ उनको समझाना है तो जरूर समझा देंगे लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। तो जिस पर उसको विश्वास है कि मेरी बात सुनकर ये गुस्सा नहीं होंगे, उनको जाकर के वो सारा सच सच सुनाएगा, आज मैंने ये किया, आज हम दोस्तों के साथ गए और ऐसे ऐसे। लेकिन तो यहां भी हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जो बात आपको दो दिन से सिखाई जा रही है कि परिवर्तन शुरू होता है स्वयं से। ज्यादातर जहां भी दूसरों की गलतियां होती हैं उसमें हम अपनी गलती नहीं निकालते हैं, हमारी उंगली हमेशा दूसरों की ओर होती है, हम दूसरों की कमी ज्यादा देखते हैं। आपसी संबंधों में, परिवारों में खासकर दूसरों का दोष देखने की हमारी आदत होती है। सिर्फ देखने की ही नहीं, वर्णन करने की भी आदत होती है, हम उसे समा भी नहीं सकते। जरूर हम उसे दूसरे को सुनाएंगे, अच्छा इसने कैसे किया, क्या किया, और उस बात को हम वैसे ही नहीं सुनाएंगे, उसको बड़ा चढ़ा करके सुनाएंगे। उसमें हम अपने भाव भी मिक्स करते हैं। मानो सास ने बहू को कुछ कहा, बहू चुप रह गई, उसने सहन कर लिया, लेकिन पड़ोस की बहू उसकी सहेली है, जाकर के उसको सुना दिया, आपको पता नहीं मैं कितना सहन करती हूँ, मेरी सास मेरे साथ कैसा करती है, अगर कोई और दूसरी बहू होती तो कब की घर से अलग हो जाती। मानो ऐसी बातें की जाकर के बाहर, अब वो बहू अपनी सास को सुना देती है और ये दोनों सास आपस में सहेली है, वो मिली उसने उसको सुनाया तो वो देखती है उसको कि उसको मेरे घर की बात कैसे पता चली, समझ में आ गया कैसे पता चली अब सास बहू के संबंध बनेंगे या बिगड़ेंगे, समा नहीं सकते। तो हम दूसरों की जो कमी देखते हैं, यदि हम देखते हैं और वर्णन भी करते हैं, यहां हमें स्वयं को परिवर्तन करने की जरूरत है, तब हमारे परिवर्तन से दूसरों को परिवर्तन की प्रेरणा मिलेगी। और परिवर्तन कैसे आएगा, परिवर्तन कैसे आएगा, ज्यादातर हम बाह्य मुखी होते हैं, बाह्य मुखी होते हैं यानी बाह्य व्यवहार में हम कभी भी आत्मचिंतन नहीं करते, हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसको कैसा करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बजाय हम दूसरों की टीका में ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम अंतर्मुखी होते हैं, बाह्य मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होते हैं, तब हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। जो भी संबंधों में समस्याएं पैदा हो रही हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो कुछ समस्याओं की बात हमने की, लेकिन और भी बहुत स्थितियां पैदा होती हैं घर परिवार में, जैसे आपस में ईर्ष्या हो गई किसी को देख करके, हम तुलना करते हैं, ये भी हम दो दिन से बातें कर रहे हैं, और धन संपत्ति को लेकर के, जो भी आज भोगवाद इतना बढ़ता जा रहा है, तो उनके उनके पास इतना धन है, इतने मकान है, इतनी गाड़ी है, और भी कई बातें ऐसी होती हैं, हमने दूसरों को देखा, ज्यादा हम दूसरों को देख रहे हैं, फिर उससे अपनी भेंट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं अगर हम सुपीरियर हैं तो अहंकार हो जाएगा, अगर हम इन्फीरियर हैं तो कहीं ना कहीं हीन भावना आने लग जाएगी। लेकिन जब हम आत्मचिंतन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि मेरे चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, मेरी सोच क्या होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं घर परिवार में, नेगेटिव सोचना आज के समय में बहुत सहज है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती। आपका बच्चा घर से बाहर गया, रोज 6 बजे तक वो घर आ जाता है, 7 बजे के अंदर अंदर घर होता ही है वो, लेकिन आज 8 बज गए, 9 बज गए, बच्चा घर नहीं आया, उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है आपका, आप नेगेटिव सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे। और सुबह सुबह आपने एक न्यूज़पेपर में समाचार पढ़ा, एक यंग लड़का मोटरसाइकिल लेकर के गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब आपका बेटा भी मोटरसाइकिल लेकर ही गया हुआ है, कितनी अनिष्ट आशंकाएं मन में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, कहीं ये तो नहीं हो गया होगा, कहीं ये तो नहीं हो गया होगा, हॉस्पिटल भी पहुंचा चुके होते हैं, कई बार हम यहां तक भी सोचने लग जाते हैं कितना देरी से वो आता है उसके अनुसार, अगर वो नहीं रहेगा तो मेरा जीवन में का क्या होगा, यहां तक भी तो, और वो 99.9% कुछ नहीं होता है, वो बच्चा घर आता है, अब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इतना नेगेटिव सोच के आपके मन में भय चिंता टेंशन हो चुका है, वो सारा प्रेशर कहां निकलने वाला है। कहते हैं वो दूसरे प्रेशर कुकर में तो सीटी होती है, वो सीटी बचती है तो, लेकिन इस प्रेशर कुकर की सीटी तो नहीं है, वो कहां निकलने वाली है। फिर वो बच्चे समझते हैं, हो सकता है कोई जेन्युइन कारण ही रहा होगा, बिना जेन्युइन कारण के तो वो लेट नहीं हुआ होगा, लेकिन हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उसको क्या करना चाहिए वो हम बताना चाहते हैं। फिर वो बच्चे समझते हैं कि मेरे माँ बाप तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं, और यहां से ही माता पिता और बच्चों की दूरी बढ़ने लग जाती है, कारण नेगेटिव सोचते हैं। तो ऐसे ही कई बार जो व्यवहार होता है, जैसे पति का पति व्यसनी हो जाते हैं, और फिर पत्नी के साथ कई बार घरेलू हिंसा होती है, उसकी वजह से शराब पीकर आते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का एक आंकड़ा है कि 33% महिलाएं पूरे विश्व के अंदर किसी न किसी स्तर पर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और वो तभी होता है जब व्यसन लेते हैं, शराब पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तब उनका कंट्रोल समाप्त हो जाता है अपने ऊपर से। तो यदि ऐसा है, कई बार तो पत्नी को स्वयं ही जिम्मेवारी लेकर के अपना पूरा घर संभालना पड़ता है, बच्चों की भी जिम्मेवारी उसे संभालनी पड़ती है, क्योंकि पति का सारा धन जो है वो व्यसन में खर्च होने लग जाता है, और कई बार बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं, बच्चे भी पति से वो व्यसन लेना सीखने लग जाते हैं। एक बार ऐसे एक व्यक्ति के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा था और छोटा बहुत छोटा था, और पति शराबी था, वो व्यक्ति शराबी था, तो लगभग हर दिन वो घर में शराब पीकर आता था, रात को देर से घर पहुंचता था, पत्नी उसके ऊपर नाराज होती थी, क्योंकि कभी भी पति शराब पीकर आएगा तो पत्नी तो खुश नहीं होगी, तो गुस्सा होती थी, तो वो गुस्से में उसको कई बार लगा देता था। बड़ा बेटा ये सारा दृश्य देखता था तो उसे नहीं पसंद आता था, उसे लगता था कि मेरे पिता ऐसा व्यवहार करते हैं मेरी माँ के साथ, तो उसको अपने पिता से भी नफरत हो गई और वो जो शराब पीता था उससे भी उसे नफरत हुई, और उसने अपने जीवन में ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी ऐसी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन जो छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था, तो वो कई बार पिता जब घर में पीते थे तो वो पीकर देखता था ये क्या चीज है जो मेरे पिताजी पीते हैं। अब उसको ये तो नहीं पता था कि ये कोई नशे वाली चीज है और इसकी लत एक बार लग गई तो छूटने वाली नहीं, तो वो पीता रहा उसको और वो छोटा बेटा शराबी हो गया। अब ये बड़ा बेटा जो है वो पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर पहुंचा और अच्छा कमाता था, वो पूरा घर संभाल लिया उसने, अपनी माँ को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। लेकिन छोटा बेटा शराब पीते पीते एकदम निकम्मा हो गया और कोई उसको नौकरी नहीं मिली, कमाता नहीं था वो। तो एक ने उसको पूछा कि तुम दोनों एक ही परिवार के हो लेकिन दोनों में इतना फर्क कैसे है? तो उसने कहा हम दोनों ने अपने पिता से सीखा है, मैंने अपने पिता से शराब से नफरत करना सीख लिया और इसने पिता से शराब पीना सीख लिया। तो ये डिपेंड करता है कि किस दिशा में हम किसी परिस्थिति को लेते हैं। अगर हम उसको नेगेटिव लेते हैं तो जीवन की दिशा कुछ और होती है, और यदि हम उसको पॉजिटिव लेते हैं तो फिर जीवन की दिशा कुछ और होती है। तो जब हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं तब हम जीवन की कई परिस्थितियों में ये समझ पाते हैं कि मुझे अपने जीवन में कौन सी दिशा लेनी है। बहुत सारी बातों को हमें कई बार स्वीकार करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को हमें परिवर्तन करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो ये समझना कहाँ मुझे स्वीकार करना है, मानो मेरे परिवार के जो साथी हैं वो मेरे अनुकूल नहीं है, उनका स्वभाव संस्कार मेरे से बिल्कुल अलग है, पर मुझे उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही मुझे काम करना है, तो मुझे स्वीकार करना होगा ये जो भी हैं जैसे हैं इनको समझ के मुझे अपना जीवन यापन करना है, तभी मैं भी सुखी रहूंगी और इनको भी मैं सुख दे सकूंगी। तो उनको स्वीकार कर लें, उनकी कमियों सहित हम स्वीकार करें, हम अच्छी तरह जानते हैं इनके अंदर ये कमियां हैं और ये विशेषताएं हैं। हर एक इंसान के अंदर गुण भी होते हैं और कमियां भी होती हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं और कुछ गुण भी हैं। तो जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरों को भी हमें उनकी कमियों सहित स्वीकार करना है। तो स्वीकार करेंगे तो फिर हमें उनके साथ रहने में टेंशन नहीं होगा, और परिवर्तन हम अपने स्वभाव में हमेशा ला सकते हैं, दूसरों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। आप जरूर उनको राय दे सकते हैं लेकिन दूसरों की जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में। अगर मुझे समझ में आता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ, ऐसे शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए, तो मुझे अपने को चेंज करना है। हो सकता है कि मैं जब अपने आप पर मेहनत करूंगी तो मुझे कुछ समय लगेगा, लेकिन अपने आप को मैं बदल सकती हूं, ये मेरी शक्ति है। अगर मुझे ईर्ष्या हो जाती है, यदि मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, मुझे बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, कोई भी बात में ऐसी फीलिंग आती है कि मैं दिनों तक सामान्य नहीं हो पाती, किसी ने मुझे एक शब्द क्या कहा वो 10 दिन तक मेरे दिमाग से बाहर नहीं होता है, इसका मतलब ये मेरी कमजोरी है और मैं इसको दूर करूं। तो यहां स्पिरिचुअलिटी हमको मदद करती है हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में, हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तन करने में। तो वो चेंज मुझे अपने अंदर ले आना है। कुछ बातों को हम अवॉइड करते हैं, संसार की कई बातें, आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम कमरे में बैठ करके वो समाचार सुनते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है उसका असर मेरे ऊपर आता है, मेरे घर का वातावरण उससे प्रभावित होता है। तो या तो हम उसे देखें ही नहीं, और यदि हम देख रहे हैं तो फिर साक्षी भाव से देखें ताकि उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, या मेरे पड़ोस में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती। अब मानो कहीं आग लग जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, कई ऐसी बातें होती हैं, अनहोनी हो जाती है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कई बातें जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो या तो हम उसे अवॉइड करें, ध्यान नहीं दें हम उसके ऊपर, या फिर हम उसे स्वीकार करें। यहां पर कहीं ना कहीं कर्म की गति जब हम समझते हैं तो वो हमें मदद करती है कि जो भी परिणाम जीवन में सामने आते हैं उसका जरूर कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। आज जो भी आत्माएं हमारे संबंध में हैं, जरूर हमारा उनके साथ कोई लेन देन का कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए हम एक दो के साथ हैं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, जब हमें वो समझ मिलती है तब हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमारा धैर्य बढ़ जाता है, हमारी आपसी समझ बढ़ जाती है, और एक दो के प्रति हम स्नेह सम्मान का व्यवहार करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को सुखमय बना पाते हैं। तो मैं यहीं इस सेशन को समाप्त करती हूँ, समय भी हो चुका है। ओम शांति।